Om Shivaya Namah. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Prashnopanishad, presented by Vishwamatmananda Guruji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
लेकिन वास्तविकता मन की परिस्थिति को कई लोग छिपा भी सकते हैं, मन में अपने चेहरे पे अभिव्यक्त नहीं भी कर सकते हैं, इसलिए दूसरे तो अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन अपने मन की वास्तविकता तो हम मन का अन्वेषण करके निश्चित कर सकते हैं। सबसे बड़ी साधना है हम अपने आप को, अपने मन की स्थिति को समझें। साधक का पहला लक्षण यही होता है, साधना तो वहां है ना, मन को परिवर्तित करने के लिए साधनाएं होती हैं। हमारी मन की क्या स्थिति है वो समझ में आएगा तो उस स्थिति से मन को ऊपर उठाने के लिए हम शास्त्र ने जो साधन बताया है उसको अपना करके दूसरी स्थिति, उत्कृष्ट स्थिति में पहुंचा सकते हैं। इसलिए सबसे पहले तो हमें अपने मन की स्थिति का पता अवश्य चलना चाहिए। मन कुछ भी करे उसका ज्ञान आपको जरूर रहना चाहिए। आपके संज्ञान में मन का व्यापार होते रहना चाहिए। लेकिन मन कुछ भी कर रहा है और आपको मालूम ही नहीं हो रहा हो तो ये गफलत में रहना जैसा है, वो तो फिर कहीं का कहीं ले जा करके रखेगा। गीता ने कहा कि तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावम युवामसि, तद यानी आपका आपके संज्ञान में व्यापार न करने वाला मन, वो क्या करता है कि आपकी जो प्रज्ञा है आत्मविषयनी, उस प्रज्ञा को, बुद्धि को बलात् ले जा करके वो जिधर चाहता है ले जाना उधर ले जा करके डाल देता है विषय रूपी खाई में। कैसे? तो कहते जैसे नौका, पतवार से चलने वाली नौकाएं जिस दिशा में वायु चल रही है उस दिशा में नौका जाती है, लेकिन यदि समुद्री तूफान उल्टी दिशा में बहने वाला आ जाए तो वह वायु, तेज गति से चलने वाला तूफान नौका को जैसे विपरीत दिशा में ले जा करके तहस नहस कर देता है। इसलिए मन का प्रचार व्यापार हमारे अपनी संज्ञान में होना चाहिए, ज्ञान में होना चाहिए। तो मन जहां कहीं भी जाता है आपके अनुमति से जाता है तो समझना चाहिए आपने साधना में सफलता पाई है। साधक का मन अधीन नहीं रहता अपने सहसा, तो समझना चाहिए अभी साधना में सफलता नहीं पा रहे हैं। तो नारद जी के मन की स्थिति ज्ञात है। ऐसे हमें भी एक बार गुरु मंत्र लिया है लेकिन जप नहीं होता है चलेगा, पूजा करने का नियम है लेकिन पूजा नहीं हो पा रही है चलेगा, स्तोत्र पाठ करने का नियम है नहीं हो पाता है चल सकता है। लेकिन मन आपका आपके संज्ञान में रहना चाहिए, क्या कर रहा है ये आपको ज्ञात होना चाहिए, तब वो उससे आप कुछ न कुछ करा सकते हैं आपके कल्याण के साधन। इसलिए सबसे पहला साधन है कि हम अपने मन का निरंतर अन्वेषण करते रहें, उसकी स्थिति को समझते रहें और फिर उसे उस स्थिति से ऊपर उठने का, उसके व्यापार का, चिंतन का विषय यदि ठीक ठीक है तो वैसा ही करने दे उसे, नहीं है तो परिवर्तित कर सकते हैं। तो नारद जी को मालूम है कि मुझे शोक होता है, उनके मन की स्थिति नारद जी को ज्ञात है, इसलिए उसे सुधारने के लिए शास्त्र ने साधन बताया है। शोक करने वाले मन को शोक से रहित करना है, तो मन का जो दृष्टा है, साक्षी है, आत्मा है, उसके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लो, तो फिर मन को शोक नहीं होगा। तो आत्मज्ञान ये शोक निवृत्ति का साधन है, वो प्राप्त करने के लिए नारद जी जाते हैं सनत कुमार जी के पास। और नारद जी को सनत कुमार जी पूछते हैं कि आप जिस आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए मेरे गुरुकुल में प्रवेश लेना चाहते हो, मेरे गुरुकुल के विद्यार्थी बनना चाहते हो, तो पहले आपकी योग्यता बताइए, क्या क्या कौन सी परीक्षा उत्तीर्ण होकर के पहले आए हैं। तो नारद जी समझा बताते हैं कि चारों वेद, 18 पुराण, 6 वेदांग, उपवेद, 10 विद्याएं, सारे जितने भी हैं ये सब जानते हैं हम। लेकिन आप कहोगे कि आत्मज्ञ होऊंगा तो मैं आत्मा को नहीं जानता हूं। सो अहम मंत्र विद एव, मैं तो शब्दार्थ को जानता हूं, वेद को जानता हूं का अर्थ। सभी वेद का अध्ययन मैंने किया है, ब्रह्मा जी का मानस पुत्र हूं, ब्रह्मा जी ने ही मुझे वेद भी प्रदान किए हैं। लेकिन वेदार्थ मुझे शब्दार्थ ज्ञात है और ब्रह्म शब्दार्थ नहीं है, वाच्यार्थ नहीं है, मैं वेद के वाच्यार्थ को जानता हूं। और वेद का जो लक्ष्यार्थ है ब्रह्म, उसे नहीं जानता हूं, आत्मा को नहीं जानता हूं। आप मुझे जैसे आत्मज्ञान के लिए प्राथमिक कक्षा वाला विद्यार्थी होता है ऐसा समझ करके आत्मा का उपदेश करिए। तो कहा ठीक ही है, तो आप तो नाम मात्र के ज्ञाता है, तो 15 पर्यायों में तो पहले आत्मा की उपाधि का ही वर्णन किया, नाम की ब्रह्म रूप से उपासना करो करके, चिंतन करो करके, फिर वाक की, तो फिर मन की, तो फिर बल की, तो अन्न की, और अंतिम पर्याय में बताया प्राण। प्राण ही ब्रह्म है ऐसा। और नारद जी गए थे आत्म जिज्ञासु बन करके, ये ब्रह्म परापर नारद जी का व्याख्यान सुना रहा हूं मैं। यहां 6 ऋषियों का विशेषण बताया है कि ब्रह्म परा शब्द का अर्थ है अपर ब्रह्म को ही जो पर ब्रह्म समझ बैठे हैं, उन्हें कहा जाता है ब्रह्म पर। जो पर ब्रह्म नहीं है, अपर ब्रह्म है, लेकिन मान बैठे उसी को पर ब्रह्म, जो उन्हें ब्रह्म परा कहा जाता है। तो ये सुकेश आदि 6 के 6 ऋषि ब्रह्म पर है, का मतलब अपर ब्रह्म को ही पर ब्रह्म समझ बैठे हैं। कैसे? तो इसके लिए नारद जी को सनत कुमार जी ने समझाया कि नाम ब्रह्म है, वाक ब्रह्म है, मन ब्रह्म है इत्यादि ये सब। और नारद जी को जैसे नाम ब्रह्म ये प्रथम पर्याय में सुना तो उससे भी उत्कृष्ट को जानने की इच्छा हुई, तो प्रश्न किया नाम से भी उत्कृष्ट कोई है क्या। फिर वाक को बताया तो दूसरा प्रश्न हुआ कि वाक से भी कोई उत्कृष्ट है का। ऐसा कहते कहते वहां तक गए और फिर प्राण को 15वें पर्याय में बताया ब्रह्म के रूप में। तो फिर नारद जी को पूर्व में 14 पर्याय में जैसा एक अंदर से प्रश्न होता आया कि इससे भी उत्कृष्ट कोई दूसरा है क्या, ऐसा प्रश्न होना चाहिए था। प्राण का ब्रह्म के रूप में उपदेश करने के बाद क्या प्राण से भी उत्कृष्ट दूसरी कोई वस्तु है, ऐसा प्रश्न होना चाहिए था, लेकिन नारद जी के मन में प्रश्न हुआ ही नहीं। नारद जी ने समझ लिया कि प्राण ही वास्तविक ब्रह्म है, आत्मा है, मैं जिसको जानना चाहता हूं वह प्राण ही है। क्योंकि प्राण का वर्णन करते समय बताया कि ये सारा संसार प्राण के ही आश्रित है। कैसे, तो रथ के नाभि में जैसे रथ चक्र के अरे होते हैं, ऐसे प्राण के आश्रित ही ये पूरा संसार है। पूरे संसार को धारण करके रखने वाला प्राण है, इसलिए प्राण ही आत्मा है। और ये सुनकर के नारद जी की जिज्ञासा शांत हुई का अर्थ है वो प्राण को ही मान बैठे आत्मा ब्रह्म। मैं जिसको जानना चाहता हूं वह यह प्राण ही है, ये जान बैठे। ऐसे ही यहां वो ब्रह्म परा, इसमें ब्रह्म शब्द से लेना अपर ब्रह्म, वह अपर ब्रह्म है नारद जी जिसे ब्रह्म समझे शुरू में प्राण को ही, वह प्राण है अपर ब्रह्म, कार्य ब्रह्म उसे कहा जाता है, और उसे पर ब्रह्म समझना ये ब्रह्म परा। और ब्रह्मनिष्ठा, वो ब्रह्मनिष्ठा का अर्थ है उस अपर ब्रह्म की ही मैं के रूप में निरंतर उपासना करते हैं, चिंतन करते हैं, अपने आप को वह सुकेश आदि छह ऋषि समझते हैं अपर ब्रह्म रूप, अहंग्र उपासना कर रहे हैं, वो शरीर रूप नहीं समझ रहा है। जो अपने आप को शरीर ही समझेगा उसको ब्रह्म जिज्ञासा होगी भी नहीं, यानी अन्नमय कोष से ऊपर उठ गए हैं वे, और तत्पदार्थ के विषय में जो स्थूल कार्य उपाधि हैं समष्टि ब्रह्मांड, वहां से तो उनकी समझ हट गई है, लेकिन समष्टि प्राण को ही ब्रह्म समझ रहे हैं, और उसी का अहंग्रह चिंतन कर रहे हैं, उसे कहा जाता है ब्रह्मनिष्ठा। समष्टि प्राण की अहंग्रह उपासना करने वाले वो हैं ब्रह्मनिष्ठा। ये पराविद्या जिनको प्राप्त करनी है उनके विशेषण बताए जा रहे हैं कि उन्हें अपर ब्रह्म ही पर ब्रह्म रूप से ज्ञात है, वहां तक पहुंचे हुए हैं, उनके मन की स्थिति ये है। तो फिर ये उपासना जो होती है ना शास्त्रीय उपासना, जो भी साधना करते हैं साधक और उसमें लगे रहते हैं, तो साधना का फल होता है उत्तरोत्तर। जब तक पूर्ण ब्रह्म की लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती तब तक उत्तर उत्तर साधन के ओर अग्रसर करना, ये पूर्व पूर्व साधन का फल होता है। जैसा जैसा परिपक्व होगा साधन, ऐसे वह उत्तर उत्तर साधन के ओर ले जाता है। तो ये ब्रह्म पर है अपर और ब्रह्मनिष्ठ है, यानी कृतोपास्ती है और कृतकर्मा है। अपर विद्या जिसके जीवन में ठीक ठीक सन्निविष्ट है, उतरी हुई है, अपर विद्या का अनुष्ठान जिसने किया है, कर्म जिसने किया उसे कृतकर्मा कहा जाता है। उसका फल होता है चित्त की शुद्धि। उपासना भी अपर विद्या है और उस अपर विद्या का फल है चित्त का स्थैर्य, एकाग्रता। और जब अपरा विद्या का फल जीवन में आ जाता है चित्त का नैर्मल्य और ऐकाग्र्य, यानी शुद्ध चित्त तथा समाहित चित्त हो जाता है, यह अपर विद्या का फल है। तो उसके अंदर फिर परब्रह्म की जिज्ञासा होती है। तो नारद जी प्राण को आत्मा के रूप से समझे शुरू में, और फिर सनत कुमार जी ने थोड़ा निर्देश किया कि यह पूर्ण ब्रह्म नहीं है, आत्मा का पारमार्थिक स्वरूप नहीं है। तो तुरंत फिर आत्म जिज्ञासा और परब्रह्म की जिज्ञासा नारद जी को होती है। ऐसे ही ये जो छह ऋषि हैं, कृतकर्मा हैं, कृतोपास्ती हैं, इसलिए शुद्ध चित्त हैं और समाहित चित्त हैं। तो शुद्ध और समाहित चित्त में परब्रह्म जिज्ञासा होती है, परब्रह्म को जानने की इच्छा होती है। इसीलिए एक तीसरा विशेषण है परम ब्रह्म अन्वेषमाणा, ये ब्रह्म परा ब्रह्म निष्ठा इन विशेषणों का फल है। इन विशेषणों से बताए गए जो साधन है उन साधन की फलावस्था को बताने वाला विशेषण है परम ब्रह्म अन्वेषमाणा। ये परम ब्रह्म है ज्ञेय ब्रह्म, निरुपाधिक ब्रह्म। उपास्य ब्रह्म की तो उपासना कर चुके हैं, उसका फल होता है समाहित चित्त, शुद्ध चित्त होना। और शुद्ध चित्त की पहचान है उसमें ब्रह्म जिज्ञासा होती है। जो एकाग्र तथा शुद्ध चित्त होगा, साधन चतुष्टय संपन्न होगा, मुमुक्षा उसके अंदर होगी, मुक्त होने की इच्छा होगी, तो फल की इच्छा साधन की इच्छा को उत्पन्न करती है। तो मोक्ष फल है, उसका साधन है परब्रह्म ज्ञान। तो परब्रह्म को जानने की इच्छा होगी, परब्रह्म की जिज्ञासा होगी, और जिसको परब्रह्म की जिज्ञासा है वह परब्रह्म को जानने के लिए परब्रह्म की खोज करेगा, अन्वेषण करेगा। का मतलब परब्रह्म ज्ञान के साधनों में लगेगा, एक खोज है। तो इसलिए कहते हैं परम ब्रह्म अन्वेषमाणा, ये परब्रह्म का अन्वेषण कर रहे हैं छह के छह ऋषि। तो शास्त्र कहता है तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित्पानी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तो जिस साधन को प्राप्त करने की इच्छा है वह साधन निष्णात जो व्यक्ति होगा उसके पास में उस साधन को प्राप्त करने की इच्छा जाने की प्रेरणा करती है। तो यहां परब्रह्म की जिज्ञासा है, मोक्ष का साधन परब्रह्म का ज्ञान चाहिए, ब्रह्म ज्ञान चाहिए। तो ब्रह्म ज्ञानी के पास ब्रह्म ज्ञान की इच्छा, ब्रह्म जिज्ञासा जाने की प्रेरणा देगी, ब्रह्म ज्ञानी के पास जाएंगे। तो ऐसा ही इन छह ऋषियों के जीवन में भी देखने को मिल रहा है कि परम ब्रह्म अन्वेषमाण है, तो देखते हैं कि हमारी ब्रह्म जिज्ञासा शांत करने की योग्यता उस समय परब्रह्म में निष्णात के रूप में बड़े प्रसिद्ध जो थे आचार्य पिप्पलाद जी, उनके पास गए। किस उद्देश्य से गए, तो उद्देश्य बताया जा रहा है येष हवई तत्सर्वम वक्षति इति, तेह समित्पानयः भगवन्तं पिप्पलादं उपसन्ना। तो भगवन्तं पिप्पलादं उपसन्ना, उपसन्ना का अर्थ होता है विधिवत शरणागत हुए, उनके पास गए आचार्य पिप्पलाद जी के पास, और वे भगवान हैं। भगवान का अर्थ है समर्थ। इनको जिसकी खोज है उसे उपलब्ध कराने की सामर्थ्य आचार्य पिप्पलाद जी में है। ये यहां पर भगवंतम इस विशेषण के द्वारा बताया जा रहा है। और एष हवई, इसमें एष यह सर्वनाम बताता है आचार्य पिप्पलाद जी को। कहते हैं आचार्य पिप्पलाद जी एक इस समय धराधाम पर ऐसे हैं जो हम लोगों को जिज्ञास्य हैं, हम लोग जिसको जानना चाहते हैं वो सब बताने की योग्यता रखते हैं। इसलिए एष हवै तत्सर्वम वक्षति, यानी तत्सर्वम से लेना हम लोगों का जिज्ञास्य, हम लोग जिसको जानना चाहते हैं उन सब को बताएंगे एष, यानी आचार्य पिप्पलाद जी। इस उद्देश्य से अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं आचार्य पिप्पलाद जी, ये समझ करके निश्चय करके आचार्य पिप्पलाद जी के पास सुकेश आदि छह ऋषि जाते हैं। कैसे जाते हैं? तो कहते हैं समित पानय, तो समित पानी, उसमें पहले ऋषियों के यहां अग्निहोत्र हमेशा होता रहा ना, हवन आदि देवताओं का आराधन, तो उसके लिए फिर समिधाओं की जरूरत होती है। तो हाथ में समित समिधाएं लेकर के गए का अर्थ है समिधा होती है सूखी लकड़ी, और सूखी लकड़ी जलती है ठीक ठीक। तो ऐसे अपरा विद्या और अपरा विद्या का जो फल है, यानी साध्य साधनात्मक जो संसार है, इस संसार विषय को जो वासना है लोकेशना वित्तेशना और पुत्रेशना, लोकेशना है साध्येशना, वित्तेशना और पुत्रेशना है साधनेशना। संसार है त्रिलोकी, ये पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष स्वर्गलोक और देवलोक, देवलोक यानी ब्रह्मलोक, इतना माना जाता है संसार। भूर्भुव स्वः, और इस संसार इसे लोक शब्द से कहा जाता है फल को, और इसका साधन है तीन लोकों के साधन बताए गए हैं तीन, वो हैं पुत्र और दो प्रकार का वित्त, एक मानुष वित्त है, मानुष वित्त से लिया जाता है मानुष वित्त साध्य कर्म को, और एक दैव वित्त है उसे कहा जाता है उपासना। इसलिए वित्त शब्द से एक प्रकार से मुंडक उपनिषद में बताई गई जो अपरा विद्या है उस अपरा विद्या को लेना, कर्म और उपासना को। और पुत्र शब्द से संतान, तो ये जो संसार अंतपाती पृथ्वी लोक है इसकी प्राप्ति का साधन बताया गया है पुत्र को, पुत्रेण अयम लोको जया, पुत्र यानी संतान। तो संतान से इस पृथ्वी लोक की प्राप्ति होती है का अर्थ है इस शरीर के छूटने के बाद भी आप इस पृथ्वी लोक के ही विषयों का उपभोग करना चाहते हैं, तो इस शरीर के न रहने पर भी दूसरा रूप धारण करके आप इस पृथ्वी लोक के विषयों का उपभोग कर सकते हैं, क्योंकि आत्मा वै पुत्र रूपेण जायते करके कहा जाता है। यह माता पिता ही संतान का रूप धारण करके प्रकट होते हैं, का अर्थ है माता पिता का दूसरा रूप है संतान उनकी, और उस रूप से दूसरे रूप से माता पिता रूप से न रहने पर भी संतान के रूप में इस संसार में रह करके इस लोक के विषयों का उपभोग किया जा सकता है, एक वो है। और कर्मणा पितृलोक, पितृलोक है स्वर्गलोक, वो कर्म से प्राप्त होता है, वित्त शब्द से ग्राह्य जो कर्म है। और दूसरा दैव वित्त है उपासना, उपासना से प्राप्तव्य लोक है ब्रह्मलोक। तो ये संसार के प्राप्ति के तीन साधन है, पुत्र कर्म उपासना, इसे कहा जाता है साधन येष्णा, और साध्य येष्णा है लोकेष्णा। तो ये साध्य येष्णा तथा साधन येष्णा जब तीव्र होती है तो मानी जाती है अभी सरस है, सुखी नहीं है। संसार के अंतःपाती तीन लोकों के ही भोगों की अंतःकरण में इच्छा ज्यादा है, तीव्र है, तो माना जाता है अभी ये सुखी हुई वासना उस समित के तरह समित नहीं है, और इन ये सुखी हुई है जिसकी, तो समिधा जैसी समिधा मानी जाती है। का मतलब सूखने का अर्थ है इनके प्रति वैराग्य, साध्य साधनात्मक संसार के प्रति वैराग्य है, वो होता है शुद्ध तथा समाहित चित्त में। और ये समित पानी होकर के गए हैं का अर्थ है साध्य एषणा तथा साधन एषणा रहित होकर के पर ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आचार्य पिपलाद जी के पास गए हैं। वास्तविक ब्रह्म जिज्ञासा तभी हो पाती है जब हमारी साध्येषणा तथा साधन एषणा समिधा के तरह सूख जाती है, तभी वो ब्रह्म जिज्ञासा वो आचार्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के पास ले जाती है। इस प्रकार ये प्रथम मंत्र पर हम लोग यथामति विचार कर चुके हैं, द्वितीय मंत्र की चर्चा हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।